यज्जाग्रतो दूर्मुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति तन्वे मना शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र में एक प्रकार से प्रार्थना की गई है मन के लिए। ये हमारा मन बहुत दूर जाता है, दूरमुदयति दूरंगमम, बहुत दूर तक चला जाता है जागृत की अवस्था में। कैसा है ये ज्योति शाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति मन को कहा है। तन में मनाशिव, वो हमारा मन या मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो तो यहाँ मन को ज्योतियों की ज्योति कहा है। तो इस मन के मन करण है, यहाँ करण होते हुए भी कुछ ये थोड़ा ज्ञान प्रधान है। बुद्धि तो बिल्कुल ही ज्ञान प्रधान है और ये केवल इसका ज्ञान संकल्प विकल्प आत्मक है। ज्ञान किसी वस्तु को आदान करना, ग्रहण करना और त्याग करना, और इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी शक्ति को बढ़ा देना और उस विषय से प्रतिबिंबित हो करके और बुद्धि के मंडल में गतिशील हो जाना और निश्चय करा करके विषयों के का विज्ञान का एक तो सूक्ष्म रूप से संस्कार रूप में हृदय की ओर को प्रक्षेपण कर देता है और उस विज्ञान का जो एक स्थूल सा परिणाम होता है वो इंद्रियों को कर्म के लिए या गतिशील क्रियाशील बना देता है। तो दो विभाग ये कर देता है निर्णय कराग्र बुद्धि के द्वारा, एक छाप को अहंकार की ओर को फेंक देता है, अहंकार भी कर्म प्रधान है उससे प्रतिबिंबित होकर के चित्त में प्रक्षेपण कर देता है। तो इस तरह ये अंतःकरण चतुष्टय का कार्य वह हमारे शरीर में बना रहता है। उनके लिए कहा कि ये हमारा शिव संकल्प वाला हो। इन्होंने तो ये नहीं कहा कि भाई ये गया चित्त की ओर को प्रक्षेपण करता है ये, क्योंकि इससे तो इन्होंने एक ही करण को सिद्ध किया है, मन को ही करण मान करके गया बात की है। पर हम तो करण चार प्रकार का मानते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और तीन प्रकार। और ये जो आचार्य हैं बहुत से वेद में भी कई कई जगह तो चित्त का भी वर्णन आता है, बुद्धि का भी वर्णन आता है करणों के रूप में, पर यहाँ मन ही ग्रहण किया गया है। तो इस मन के लिए प्रार्थना की अच्छे संकल्प वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, अच्छे कर्म करने वाला हो ताकि हमारा भविष्य जीवन अच्छा बने। काल के अभ्यास में प्रभा नाम के जल के द्वारा जब हम शरीर में जल के 10 विभाग करते हैं तो पहला अमृत भाग हुआ जल का, दूसरा प्रभा हुआ और तीसरा हुआ रसना, रसात्मक। तो प्रभा का संबंध इस मन के साथ में रहता है, इसकी व्याख्या की गई थी, और रसना का संबंध इस जिह्वा के साथ में रहता है। ये सदा तरल बनी रहती है और जल का पानी का प्रक्षेपण सा करती रहती है। वास्तविक में अगर एक और दृष्टि से देखा जाए 80% जल जो है शरीर में रचना के विषय में, हमने तो 10 विभाग किए हैं, ये कंठ से ऊपर छाती और गुर्दों में 3 स्थान इसके प्रधान हैं जल के रहने के, और इनमें 80% ये जल रह करके कार्य करता है। तो यहाँ हमने इस प्रकार से 3 प्रकार का जो सप्त प्रधान जल है वो यहाँ ऊपर रहता है और 4 प्रकार का जो जल है वो यहाँ तक नाभि तक वो कार्य करता है, इसकी भी व्याख्या करके समझाऊंगा। तो ये जो रसनात्मक जल है, वैसे तो रसना ज्ञानेंद्रियों में है क्योंकि रसों को बतलाती है, 6 प्रकार के रस होते हैं, इन छह प्रकार के रसों के वास्तविक में रसना इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों में प्रधान है, इसलिए हमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों में सदा आकृष्ट बनाए रखती है। और कर्म इंद्रियों में शिशन प्रधान है, पेशाब की इंद्रिय, और ज्ञान इंद्रियों में इसको प्रधान माना है। इसके सभी प्राणी पशु पक्षी क्या इस रसना के दास बने रहते हैं। किसी पशु पक्षी को उनको भी खट्टी मीठी वगैरह चीज़ें उनको भी रुचिकर लगती हैं, पक्षियों को भी लगती हैं, मनुष्यों को भी लगती हैं। तो ये छह प्रकार के रस, जैसे मधुर रस है, लवण रस है, तिक्त जिसे मिर्च वगैरह कहते हैं, कसाय जैसे हरड़ आदि होते हैं, आंवला आदि होते हैं, मधुर तिक्त कसाय लवण, और क्या नाम एक चरपरा होता है मिर्च आदि। तो ये छह प्रकार के रस होते हैं, तो सदा जिह्वा इनकी दास बनी रहती है। पता नहीं इस पर अधिकार तो होता नहीं जल्दी। एक बार अनायासी हुआ था मुझे, पहले युवावस्था में रसायन बनाने का ठरक शौक लगा था, तांबे को सोने के रूप में बदलने की बात, तो कलर बदल जाता था, वजन पूरा नहीं आता था। तो मैंने एक कलमी शोरा, मसादर, जौखार और एक फटकड़ी, ये चार चीज़ों को लेकर के एक तेल निकाला। उस तेल में शक्ति तो इतनी थी हाजमे करने की, एक छोटी सी बूंद जैसे सुरमचू होता उस पर जितनी बूंद ठहर जाए, और ये चीनी में या किसी चीज़ में रख करके खाओ, जो कुछ पत्थर भी आपने खाए हों सब चीज़ों को आधे घंटे में हजम करने वाली चीज़ थी। तो इतना तेज वो क्षार इनका तेजाब सा बन गया था। मैं कभी कभी किसी को दे दिया करता था, उन दिनों में मुझे औषधियों का भी शौक था, तो ये बनाई थी दूसरे। तो ये क्षार में कई साल रख कर के भूल गए एक शीशी में, ध्यान ही नहीं रहा, मैं बाहर ही घूमता रहा देशों में इधर उधर। तो फिर चार पाँच साल के बाद वो क्षार मैंने देखा, भाई अब इसका क्या हाल है, कैसा होगा। उसका मैंने थोड़ा सा एक बूंद रखा चीनी के साथ में, मेरी सारी जीभ जल गई, और ऐसी जल गई इसने खट्टा मीठा वगैरह सभी बताना बंद कर दिया। चीनी भी रेत की तरह लगती थी, नमक भी रेत की तरह लगता था, किरकिरा सा, चरपरे का कुछ पता ही नहीं चलता था, सिवाय एक मिट्टी या रेत के, रेत का जो स्वाद समझो, सारे रस रेत की तरह बन गए थे। तो अब मैं शर्म के मारे किसी को बताऊंगी नहीं। तो मेरा ये होया चार पांच महीने ये जली रही, मैं क्या भगवान ने बड़ी कृपा करी, सारे स्वाद पुआद खत्म हो गए। मैंने कई महीने किसी को बतलाया नहीं कि मेरी ऐसी स्थिति, क्योंकि मेरी अपनी मूर्खता थी। सो ये तो हुआ दृष्टांत, दारिष्टांत इसका ये है कि ये जिह्वा अब भी बड़े बड़े अच्छे स्वाद, पता नहीं मुझे स्वाभाविक मीठा, औरों को भी प्यारा होगा, मुझे भी बड़ा प्यारा। इतने सन्यासी बन गए, इतनी तपस्या करी, इतनी साधनाएं करी, अब जैसे औरों को मीठा ही अच्छी लगती है, मुझे भी लगता। अब ये बात दूसरे को सेखी मान के कह दे, नहीं जी देखो छोड़ने को तो आदमी हट और बल से सब कुछ कर सकता है। कहो तो अब रस छोड़े थे वहाँ पीछे एकदम, कोई कई रस नहीं तो पेट का इतनी खराबी हो गई, तो और कई गड़बड़े पैदा हो गई। तो ये रस जो हैं शरीर के पोषक हैं, अगर इनको युक्ति पूर्वक नित्य प्रति सेवन किया जाए, छहों प्रकार के रसों को नित्य सेवन किया जाए, तो शरीर में रोग पैदा नहीं होते, सारे विटामिन रसों से मिलते रहते हैं। तो इन रसों का बोध इस जिह्वा के द्वारा, रसना के द्वारा होता है। तो ये रसना इंद्रिय बड़ी प्रधान है, और हर वक्त ये तरल बनी रहती है, जल का भाग भी इसमें है, और हर वक्त हमारे ये जो मसूड़े कंठस्थल होते हैं वह इनमें से पानी तरल निकलता रहता है, और जब खाते लुबाब भी जिह्वा से आसपास के स्रोतों से पानी निकलता रहता है। कोई चीज़ रखो तो पानी बहने लगता है, नाक से भी बहने लगता है, सिर से भी बहने लगता है, तो बहुत सा भाग जल का वह ये ग्रहण करता है। सर में रहा करता था, साधना किया करता था नहर के किनारे, एक और बाबा रहता था वहाँ 35 वर्ष से, एक वृक्ष होता है नहर पर वहाँ टाली उसको कहते शीशम, उसके नीचे बैठ करके उसने 35 वर्ष वहाँ साधना की थी। और मेरे टाइम में वो 10-15 वर्ष वहाँ रहता रहा, पहले कहीं तरन तारण की तरफ रहता रहा। बस उसका काम क्या था, दरख्तों के पत्ते उबाल करके खंडी में तो उनको खा लेना एक वक्त, और न कोई नमक न कोई मिरा न कोई लेना न कोई देना, पत्ते खा करके उसके शरीर में पीलापन सा आया। उबले पत्ते पीले से बन जाते हैं प्राय ये सब इन चीज़ों के, पीलापन सा। और कोई चीज़ वो भी कभी कभी मेरे से दिया सलाई वो ले लिया करता था, और वहाँ से लकड़ी पकड़ी चुप करके बस मैं उसको डेढ़ एक महीने में एक दिया सलाई दे दिया करता था। तो अब एक बात चल रही थी, मैं कह महाराज आपने क्या नाम, तो सब रसों पे आपका तो विजय हो गई, मत्थे पे ऐसे करने क्या विजय हो गई। चुप रहा उस दिन, तो 35 वर्ष से उसके चित्त में संस्कार पैदा हुआ था जलेबी खाने का, और मन को समझाने के लिए 35 वर्ष वो साधना करता रहा। अरे नालायक, आगे तेने सैकड़ों बार जलेबी खाई थी, उनसे तेरी तृप्ति नहीं हुई, तो एक बार के खाने से और क्या तृप्ति। वो कहने लगा कि मैं समझा रहा था इस नालायक को, समझ नहीं पा रहा। तो वो मैं शहर में पढ़ने जाया करता था, वो एक दिन मेरे आगे आगे चला। मैं कहा बाबा जी आज कहाँ जा रहे हो, चुप कुछ नहीं कहा, कभी शहर जाता ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था उसका, पर आज वो 11:30 बजे मैं भी रोटी पराठी खा के चला था, पुस्तक बगल में थी एक, पढ़ने जा रहा था नमक मंडी, तो वो भी चला। चलते चलते लक्ष्मण चौक में जा करके एक सरदार हलवाई ने जलेबी निकाल निकाल करके और एक रखी हुई थी परात में ताजी, वो जा करके यहाँ खड़ा हो गया, मैं पीछे खड़ा रहा। तो जब वो हलवाई अंदर चला गया, इसने ऐसे हाथ बांध करके और उसमें जलेबी के थाल में मुंह डाल दिया कि खा जलेबी, तो मैं तो पीछे खड़ा था। इतनी देर में जल्दी वो हलवाई सिखान करके और उसने देखा उसको खाते हुए, मुंह में डाले, थाली भरी हुई थी, उसने जिससे जलेबी निकालता था 4-5 उसकी पीठ में मारे जोर जोर से, बदमाश ये है मेरी सारी जलेबी खराब कर दी, दुकान झूठी करती। मैंने कहा सरदारी ठहर जाओ, खाने तो महात्मा को, पैसे मैं दे दूंगा जितना तुम्हारा खर्चा होगा। तो उसकी पीठ में खून बह रहा और मुंह डाला हुआ, मैं उसको हटा कर, मैं कह बाबा जी 2-4 से जलेबी आप मुझे कहते तो मैं ला देता, क्या उसमें पड़ रहा था कभी आपको जलेबी। कहता है कि इस नालायक को मुझे समझाते हुए 35 वर्ष हो गए थे, अब इसको ये अकल आई है कि एक दिन की जलेबी के खाने का तो ये फल है, अब आगे मांगेगा तो क्या बताएगा। तो जो रोज खाते हैं ये मिठाई और जलेबी, उनकी क्या गति होगी, मुझे तो एक दिन के खाने की ये सजा मिली। सो कहने का मतलब तो ये है कि इंद्रियों के ये स्वाभाविक धर्म हैं, इन स्वाभाविक धर्मों को हटाया नहीं जा सकता। रसना का स्वाभाविक धर्म है, इसने रसों को ग्रहण कर, तो इसलिए गीता आदि ने कहा कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त सपना विबोधस्य योगो भवति दुःख। तो योगी को तो युक्त ही आहार और व्यवहार सब युक्ति पूर्वक ही करने चाहिए जितनी आवश्यकता। तो कहने का तात्पर्य ये है इंद्रियों के ये स्वाभाविक धर्म लगते हैं। मुझे भी बहुत साधना करते करते निरोध करते करते इंद्रियों के विषयों से हट, जबरदस्ती बलात्कार से रोके रहे तो बात दूसरी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई सामने पदार्थ आया हो और मन की या बुद्धि की दृष्टि उसकी और जाती ना हो, जाती जरूर है इनका सर्वथा, क्योंकि जब और दुनिया के व्यवहार करते जैसा जैसा कार्य क्षेत्र आता है संस्कार तो सहस्रों लाखों पड़े ही हैं, तो संस्कार आने के सामने खड़े हो जाते कार्य क्षेत्र के। अब मेरी मर्जी है कार्य क्षेत्र में मैं इंद्रियों को शरीर को नियोजित करूं ना करूं, ये मेरी मर्जी पर है। पर ये बात नहीं कि इसमें संस्कार आते नहीं, कार्य क्षेत्र को देख करके इच्छा नहीं होती, इच्छा जागृत होती है, इच्छा को भी बलपूर्वक रोका जाता है, समझाया जाता है, जैसे 35 वर्ष वो समझाता रहा था, या ज्ञान वैराग से रोका जाता है। तो इंद्रियों की ये स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, इनका निरोध होता नहीं है किसी से, स्वभाव हटाया नहीं जा सकता। अग्नि का स्वभाव है जलाना, दह प्रकाश करना, हटा जब तक अग्नि रहेगी ये चीजें रहेगी। तो इसी प्रकार ये इंद्रियों के भी धर्म है विषयों को ग्रहण करने के, इनको हटाया। हाँ ये है, अगर हम औषधि के रूप में सेवन करें सब चीजों को, पदार्थों को, जैसे रोगी एक भूख लगी है ये भी एक प्रकार का रोग है, तो इस रोग की निवृत्ति के लिए जैसा अवसर पर मिल जाए औषधि के रूप में इसको दिया जाए। और एक और बात यह है कि जिस इंद्रिय का ज्यादा भोग आदमी करने लगता है ना, तो उसी प्रकार के पदार्थ सामने उसके आने लगते हैं और शरीर में उसी प्रकार की रचना होने लगती है। जिस मार्केट में जिस पदार्थ की ज्यादा डिमांड होगी वही बन बन के आने लगेगा। तो इसलिए जो ज्यादा भोगी विलासी आदि होते हैं उनकी वृत्ति वैसी बन जाती है। और ये जो बहुत कामी व्यक्ति होते हैं, बहुत स्त्री पुरुष मैथुन करने वाले होते हैं, तो इनकी सब रसों का सब धातुओं का वीर्य बनने लगता है और भी ये रोज क्षीण होता चला जाता है और थोड़े समय में उनका शरीर सूखने लगता है, कमजोर होने लगता है, व्याधित होने लगता है, बीमारियां उसमें घर करने लगती हैं और एक प्रकार से मरण ही हो जाता है। तो इसलिए स्वाभाविक धर्मों का तो निरोध नहीं किया जाता, पर वो युक्त आहार विहार जो है उस धर्म का पालन करते हुए इंद्रियों के भोग कोई स्वाभाविक की इनका भोगना है, भूख लगनी है, रोटी खानी है, वक्त पर जैसा आ गया प्रसन्नता से खा ले। तो इन्हीं बातों को कह रहे थे कि ये जो रसना है इस पर सर्वथा अधिकार पाना तो असंभव है। तो ये रस को भी बतलाती है और भोग भी प्रदान करती है और जल का इसके साथ संबंध रहता है, क्योंकि जल ये हर वक्त वह बहाती रहती, निकालती रहती, खींच खींच कर गंध स्थलों से, जैसे स्वाभाविक हर वक्त मुंह गीला बना रहता ना, इसके द्वारा मसूरों इसके आसपास के स्रोतों से पानी निकलता रहता है और अंदर जाता रहता और मुख को तर करता रहता, गले को तर करता रहता। तो इस जल को अगर माध्यम बनाया जाए, जैसे इस जिह्वा के अंदर जल वर्तमान है चारों तरफ इसके, ऐसे चेतन सत्ता भी इस जिह्वा के अंदर, इस रसना के अंदर, इस जल के अंदर वर्तमान है। अगर इसको माध्यम बना करके चेतना का साक्षात्कार किया जाए तो इंद्रिय भी यहाँ कार्य करती है और जल भूत भी कार्य करता है। तो ये भी एक माध्यम आत्म साक्षात्कार का बन सकता है।